धवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 17 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण ओहि समुत्तीर्णये जिनेणमिम् वेयण महाहियारम् विविहियारम् परूहिमु। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये चौथा खंड है, उसका नाम है वेदना खंड और हमारा विषय है वेदना अनुयोग द्वार। 10वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 92 पर हम आ गए, 92। ये जो नया पैराग्राफ है वहां से अपनी शुरुआत होने वाली है। यहाँ हम यो क्षेत्र को बताकर उसमें फाली फाड़ कर वो अन्यत्र जोड़कर उसका क्षेत्र बताने की कोशिश की है। जैसे पेज नंबर 91 पर देखना, नीचे का जो पैराग्राफ है, हमने तो देखा था कि युवा मध्य जो है, युवा मध्य का आभार काल क्या है, तो तीन गुनाहनिया। यह जो नई संदृष्टि में हमने माना था, कुल तीन गुनाहनिया पूरी ली, यानी 1536 को तीन गुनाहनिया यानी 12 से भाग देने पर 128 आते हैं। तो उसके बाद हमने 96 जो तीसरा निषेक है उसके बाद देखी थी। तीसरा निषेक यानी दूसरे निषेक में एक प्रक्षेप कम था, तीसरे निषेक में दो प्रक्षेप कम थे। नहीं, यहाँ का प्रक्षेप 16-16 का है, यानी 128 - 16 = 112 हुए। 112 में से 16 गए तो 96 हुए। उसी का अर्थ दूसरे पद्धति से कहें कि 128 का चौथा भाग कम है। तो चौथा भाग कम है तो उन्होंने अभी ऐसा बताया पेज की बात कर रही हूँ मैं। हम जैसे क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो यानी एक चौकोर करते हैं, ऐसे एक चौकोर लिखना, 128 उसका हाइट लिखेंगे और ऐसे 12 लिखेंगे, तीन गुनाहनिया ने 12, ऐसा हमने एक आयत लंबा तैयार किया। ये तीन गुनाहनिया है, ये चार चार। अब यहाँ क्या करना, 128 का चौथा भाग यानी हर भाग 32-32 का है, तो तीन भाग छोड़ और चौथा भाग जो है वो यहाँ से कट करो, ऊपर का कट करना। अब ये कितना हुआ, 32 वाला हुआ, और नीचे कितने, 3 32 रह गए नीचे, 96, और ये 32 का फाड़ कर निकाला। अब ये 32 के हाइट वाइज ऐसे तीन टुकड़े करना, तीन गुनाहनी है ना, एक गुनाहनी इंटू 32, दूसरी गुनाहनी इंटू 32, तीसरी गुनाहनी, ऐसे तीन पीसेस करना और इसके बाजू में जोड़ देना। तो 32-32 के तीन पीसेस हमने साइड में जो ऊपर से कट किए और उसके वर्टिकली टुकड़े करके एक के आगे एक जोड़ दिए, तो उसकी भी वैल्यू 96 हो गई। तो अभी कैसे हो गया, एक बाजू 96 हो गई और दूसरे बाजू में चार गुनाहनियाँ हो गई। ये तो समझने में भी आसान है। अब उसके बाद उन्होंने 92 पेज पर आ गए, यानी ये भागहार चार गुनाहनी हुआ और वहां का जो निषेक है वो 96 का हुआ, यानी वो तृतीय निषेक हुआ था। अब यहाँ तो हमारे यहाँ चार ही निषेकों की एक गुनाहनी है, परंतु यथार्थ में आगे बहुत सारी चले जाएगी ना, तीसरा निषेक, चौथा, पांचवा, छठा, दसवा, कितना असंख्यात निषेक हो जाएंगे। तो यहाँ कहते हैं अभी ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सा निषेक ऐसा है कि जिसका भागहार पांच गुनाहनिया हो जाएगी, ऐसा है कि जिसका भागहार, जैसे अभी हम क्या देख रहे हैं, 128 का भागहार निषेध, भागहार जिसको कहेंगे 12 यानी 4, तीन गुनाहानी है, तीन गुनाहानी। 96 का चार गुनाहानी है। ऐसी कौन सी संख्या है, कौन सा निषेध ऐसा है कि जिसका वो अवहार गुनाहानी, पांच गुनाहानी प्रमाण होगा, ये उनका प्रश्न है। समझ में आई ना बात? तो यहाँ जैसे हमने 32 को कट किया और यहाँ 3 32 ऐसे जोड़े तो 96 मिल गए, और एक गुनाहानी प्रमाण इसकी जो ऐसी लंबाई बढ़ गई, तो हमको पांच गुनाहानियां चाहिए, तो वहां का वैल्यू कितनी होगी, ये कहना चाहते, ये यहाँ की कितनी होगी ये कह रहे, यही तो उनको हमको निकालना है। यहाँ ये बाजू 96 हो गई और ये तीन गुनाहानियां थी, एक गुनाहानी एक्स्ट्रा हो गई, क्योंकि एक एक गुनाहानी का हमने एक एक पीस वर्टिकली निकाला था।
चार गुनाहानी,
हाँ ये 32 32 वाले ना, हाइट वाइज 32 32 है और हर एक की विड्थ एक गुनाहानी है, इसलिए तीन गुनाहानी पहले थे और एक गुनाहानी और एक्स्ट्रा मिली, तो 96 का भागहार तीन गुनाहानी वाला भागहार है ने, 1536 को हमने चार गुनाहानी से भाग देंगे तो 96 आ जाएगा। ये यहाँ का 96 बाय चाचक 16 बराबर है, 16। ऐसे भी हम डायरेक्ट 1536 को 96 के भाग देते हैं तो भागहार जो मिलेगा 16 आता है, तो ये चार गुनाहानियां होती है। ऐसे हमको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पांच गुनाहानियों से डायरेक्ट हम उसको भाग देंगे, किसको, 1536 को, तो हमको डायरेक्ट रिजल्ट मिलने वाला है। 1536 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमें यहाँ की वैल्यू मिलेगी, हमारे उदाहरण में फिट नहीं होगी क्योंकि हाँ 5 20 डिवाइडेड बाय 20, चार गुनाहानिया ने, पांच गुनाहानिया ने 20 डिवाइडेड बाय 5 नहीं, डिवाइडेड बाय 5 गुनाहानिया यानी 20 से भाग देना, 1536 को 20 से भाग देना है, यानी उसका डायरेक्ट मिल जाएगा हमको आंसर। देखो 1536 है, 20 अभी 2 से भाग देंगे, 2 7 14, 2 6 12, 2 8 16 और 10 है तो 76.8 हो जाएगा, है ना। पर ऐसे हमारे पास निषेक नहीं है, वो यथार्थ में अलग अलग वैल्यू वाले निषेक है। निकालने का प्रोसीजर बता रहे, अभी कैसे निकालना उसके लिए कहते हैं। पांच गुनाहानी मात्र भागहार के उत्पन्न कराते समय, ये भागहार हमको उत्पन्न कराना है, ये वो मध्य के 2.5 खंड करके, 2.5 खंड करना, उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर, यानी पांच द्वितीयांश यानी 2.5, उसको भाग दे, उसका भाग 128 को देना, तो 128 भागी यानी बटे, हाँ तो उल्टा करके गुणा करेंगे तो 5 2 5 5, यहाँ तक ख्याल में, यानी इसके पांच खंड करके उसमें से 2 ग्रहण करो, तो हम इसे 128 जो लंबाई में लिखते थे तो उसके हम 5 2 3 4 5 खंड करेंगे, उसका 2.5 भाग यानी 5 में से 2 भाग हमने ले लिए तो हमारे 2.5 का भाग हुआ। और ये तो ऐसा ही था ना आयत, पहले हमने तीन गुनाहानी एक बाजू और एक बाजू 128 लिखे थे, 128 के 5 भाग किए, उसमें से 3 भाग रखे नीचे और ऊपर के 2 भाग है उसको फाली रूप से फाड़ दिया। यहाँ तक समझ में आई ना बात? अब यहाँ कहते, अब कहते एक खंड को अलग कर देने पर शेष इच्छित क्षेत्र होता है, ये हमारा इच्छित क्षेत्र यानी उसकी हाइट इतनी रही, अभी वो लंबाई पांच गुनाहानी हमको करनी है, तो ये किस तरह से इसमें एडजस्ट होगी वो बता रहे हैं। ये हमको इच्छित क्षेत्र मिल गया, दो निकाले 3 रखे, 5 में से 2 निकाले, अब वो 2 निकाले उसमें किस तरह से एडजस्ट हो गए, क्योंकि यहाँ 2 गुनाहानियां बढ़नी चाहिए, 3 गुनाहानियां ऑलरेडी थी और उसके 2 गुनाहानियां बढ़ने हैं। तो देखो अभी अलग किए हुए एक खंड में से 2.5 भाग विस्तृत और 2 गुणहानि आयत क्षेत्र को ग्रहण कर विस्तार को विस्तार के साथ मिलाकर प्रथम खंड में मिला देने पर पांच गुणहानिया आयाम होता है। क्या कहना चाहते हैं? अभी ये दो खंड प्रमाण है ना,
वो ढाई खंड प्रमाण है ना।
हाँ,
ढाई खंड प्रमाण,
ये ढाई है, ये अढ़ाई वाला खंड है। वो हमें पांच में से दो कह रहे हैं, पर एक्चुअल का वो अढ़ाई वाला हिस्सा है। ये पूरा है, अढ़ाई वाला है। पांच में से दो का ही अर्थ होता है अढ़ाई वाला खंड। बराबर है ना, पांच में से दो लिए उसका अर्थ क्या है, वो अढ़ाई वाला खंड है। तो अभी अलग किए हुए एक खंड में से अढ़ाईवा भाग विस्तृत और दो गुणहानी आयत क्षेत्र को ग्रहण करके, ये अढ़ाईवा भाग ये नहीं, ये अढ़ाईवा भाग है,
दो गुणा,
ये जो हमने दो थे वो अढ़ाई भाग है, और अढ़ाई भाग और यहाँ तीन गुणहानिया है। हमने जो क्षेत्र निकाला फाड़ कर, वो उसके डायमेंशन क्या है, वो अढ़ाईवा भाग है, यानी जो हमने तीन में तीन रखे और दो खंड लिए उसकी बात है। ये अढ़ाईवा 128 का अढ़ाईवा भाग एक बाजू, और दूसरी बाजू तीन गुणहानी है। अब इसमें से क्या करना, दो गुणहानियां और अढ़ाईवा भाग ले लेना, अब इसमें फिट कर देना। ये यहाँ दो गुणहानी है, अढ़ाईवा भाग है ना, नीचे जो हमने तीन खंड छोड़े थे उसमें से दो खंड प्रमाण, तो ये इतना हो जाएगा पूरा। यहां से निकाला और वहां फिट कर दिया, ये समझ में आई बात। अभी ये रह गया यहाँ पर,
ये ऊपर,
ये अढ़ाई भाग प्रमाण है, और इसे हमने नीचे पांच में से तीन छोड़े थे, पांच में से अभी एक बाकी है, तीन में से एक बाकी है, तो ये हाइट वाइज जो है, हाइट वाइज उसके दो, हाइट वाइज दो करना इसको, एक यहाँ फिट करो और एक यहाँ फिट करो। तो ऊपर का हमने निकाल दिया और बाजू में फिट किया। समझ में आई बात, पांच टुकड़े किए हाइट के, हाँ, और उसमें से दो टुकड़े ले लिए थे, दो खंड लिए थे, तीन रह गए। हाँ, यथार्थ का ढाई वाला, अभी हम इसमें बोलूंगी, हम अभी मैं इसमें बोलती हूँ। हमने हाइट वाइज 128 थे, उसके हमने पांच अलग अलग हिस्से खंड कर दिए, तो ऊपर क्या हो गया, दो खंड और एक बाजू तीन गुणहानी, ऐसा स्क्वायर पीस हमने निकाल लिया। अब ये स्क्वायर पीस के वर्टिकली ऐसे टुकड़े करना, तीन गुणहानी प्रमाण थे ना, उसमें से दो गुणहानी एक बाजू और वर्टिकली दो खंड, पांच में से दो खंड, इसको निकाल कर हमने नीचे यहाँ फिट कर दिया, यहाँ का निकाल कर वहाँ फिट कर दिया, यानी वो दो खंड तक आ गया और दो गुणहानी बढ़ गई,
तीन के पास।
अब ऊपर का एक खंड बाकी है, अब यहाँ एक गुणहानी और ऊपर ऐसे दो खंड प्रमाण शेष टुकड़ा था, तो उसमें एक एक खंड ऐसे, एक यहाँ एक खंड, ये यहाँ बाजू बाजू में
पांच गुणहानी,
तो ये बराबर एक खंड, जो तीन में से जो दो खंड पहले हमने दे दिए थे, अभी एक बाकी था उसमें ये फिट कर दिया, तो पांच गुणहानी का ये निषेक तैयार हुआ। ये इतना यानी वो कितना है,
तीन भाग,
अढ़ाईवा भाग निकाल लिया, पर हमने उसमें से पांच में से तीन हम गिन रहे हैं, है ना,
तीन भाग और
पांच
गुणहानी,
वो पांच द्वितीयांश वाला भाग था, ये तीन पंचमांश वाला भाग शेष रहा, दो पंचमांश निकाला, तीन पंचमांश बाकी रह गया, ये कहना चाहते, और उसको इस तरह से फिट कर दिया। ये यहाँ समझ में आई बात, देखो फिर मैं इसको पढ़ती हूँ, 92 नया पैराग्राफ। पांच गुणहानी मात्र भाग हार के उत्पन्न कराते समय यो मध्य के अढ़ाई खंड करके, अढ़ाई करके यानी उसके दो पंचमों से गुणा करो, पांच द्वितीयों से भाग दो, यानी 128 डिवाइडेड बाय पांच द्वितीयांश, उनमें से एक खंड को अलग कर देने पर, जिसको हम कहते हैं फाली निकाली, शेष इच्छित क्षेत्र होता है, यानी वो हमारे हाइट मिल गई हमको, 128 में से अभी कितना शेष रखना, तो पांच भाग करके उसमें से दो लेना, वो निकाल लिया और तीन नीचे शेष रह गए अलग किए हुए एक खंड में से। यानी वहां आप डायरेक्ट दे सकते ना, 128 का तीन पंचमांश शेष रहा और दो पंचमांश हमने फाड़ कर निकाल दिया, तो 128 का हम अगर तीन पंचमांश कितना होता है, तो पांच तृतीयांश से भाग देना पड़ेगा ना उसको। तो यहाँ से तीन चौक बारह, तीन दूनी सह और दो तृतीयांश, उसको पांच गुना करें, इतना हो जाएगा इस तरह से। इसमें तो फिट होगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, हमारी गुणहानि समाप्त तो हो जाती है ना, यहाँ पांच गुणहानि का सवाल ही नहीं है। हाँ, यानी वो जैसा कि जिसको कहेंगे ना कि अपूर्णांकों में ही संख्या आएगी,
तो यथार्थ में जो असंख्यक गुणहानियां है वहाँ पे भी अपूर्णांक पे,
वहाँ अपूर्णांक में कैसे होते, जीवों को अपूर्णांकों में डिवाइड करेंगे, आधे जीव हो गए क्योंकि ये जो संख्या आती है 128 वगैरह, वो जीवों की संख्या है अब
नहीं भागार का
नहीं, छोटी इतनी संख्या इसलिए अपूर्णांक हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं में कैसे अपूर्णांक रहे, असंख्यात है ना। अभी इसको पढ़ेंगे, देखो, अलग किए हुए एक खंड में से अढ़ाईवे भाग विस्तृत और दो गुणहानि आयत क्षेत्र को ग्रहण कर। पहले तो हमने कैसे निकाला, अढ़ाईवा भाग और तीन गुणहानि प्रमाण लंबाई, सब पूरा ऊपर से निकाल दिया था, अब उसमें से वर्टिकली दो गुणहानि वाला और एक गुणहानि, ऐसे दो पीस बनाना, तो दो गुणहानि वाला वो तीन गुणहानि के बाजू में फिट कर देना और हाइट वाइज हमको पांच में से दो खंड मिल गए और एक खंड भी ऊपर बाकी है। अब ये एक गुणहानि वाला जो पीस है उसके वर्टिकली दो टुकड़े, यानी उसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकल जो हाइट थी उसके दो करना और उसके एक साइड बाई साइड फिट कर देना, तो एक गुणहानि का दो गुणहानि हो जाएगी और हाइट वो नीचे हमने दो खंड में फिट किया था, ऊपर का एक खंड मिल जाएगा, पांच में से तीन खंड पूरे हो गए, यही कह रहे हैं यहाँ पर। विस्तार को विस्तार के साथ मिलाकर, विस्तार ने वो हाइट लेना, प्रथम खंड में मिला देने पर पांच गुणहानिया आयाम होता है, शेष खंड को मध्य में फाड़कर विस्तार को विस्तार में मिलाकर स्थापित करने पर पांचवा भाग विस्तृत और दो गुणहानिया आयत क्षेत्र होता है, फिर इसे उठाकर पांचवे भाग को पांचवे भाग के पास लाकर पार्श्व भाग में मिलाने पर, मैंने तो आपको बता दिया अपनी भाषा में, यहाँ भी पांच गुणहानिया आयाम होता है, इस कारण यहाँ पांच गुणहानिया भागार है। इसी प्रकार अन्यत्र भी शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए भागार की प्ररूपना कराना चाहिए। देखो इसमें तो ये गणित है, तो उसमें तो बुद्धि का तो विकास कह रहे हैं और हमको तो ऐसा लगता है बोझ जैसा लगता है। यहाँ उपयुक्त गाथा ऊपर देखते हैं। इच्छहिदायामेणय रुवजुदेण वहरे च विखंभम लद्धम दीहत्तजुदम इच्छिदहारो हवई एवं। रूपाधिक इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना चाहिए। देखो विस्तार का अर्थ है ना, हमने अपने भाषा में हाइट लिए,
नहीं विस्तार,
अभी तो विस्तार को विस्तार के साथ मिलाकर लिख रहे हैं ना, उसी से देखो ऊपर क्या कहा, आयत किसको कहा, तीन गुणहानि को आयत कहा था आयाम, और विस्तार को ने 128 को विस्तार कहा था। यानी यहाँ देखो रूपाधिक इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना चाहिए, ये विस्तार यानी हाइट हमारी भाषा में, यानी 128 हमारा विस्तार था ओरिजिनल, तो रूपाधिक इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना चाहिए, ऐसा करने से जो लब्ध हो उसमें दीर्घता को मिलाने पर इच्छित भागहार होता है। दीर्घता को मिलाने पर नहीं, यहाँ का ये इसमें मिला देना विस्तार हमारा 128 था ना, इच्छित आयाम हमारा 5 गुना नहीं था ना, एक मिनट, इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना, ऐसा करने से जो लब्ध हो उसमें दीर्घता को मिलाने पर,
ये इच्छित तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, इच्छित आयाम निकाल रहे हैं
हाँ, पर वो आयाम जब निकाल रहे हैं उससे विस्तार को अपहृत कराना करना चाहिए।
रूपाधिक
एक एक बढ़ाना,
एक एक बढ़ाना, और हम लोग इच्छित आयाम को फाइंड आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं ना,
इच्छित आयाम तो हमको चाहिए है ना,
वो दैट इज आवर
इच्छित भागहार, दोनों को इच्छित इच्छित लगाया, दोनों के लिए इच्छित लिखा, एक कोई एक बताते तो दूसरा मिल जाता ना, उदाहरण में ही घटाना पड़ेगा हम,
नहीं बात नेक्स्ट पेज पे है।
हाँ, इच्छित आयाम 3 गुणानी है और विष्कम्भ 8 प्रक्षेप है, यानी यहाँ 16, 8, 28 ऐसे 128 तो 3 अधिक 1 = 4 हुआ। इच्छित आयाम 3 गुणहानि है, नहीं नहीं वो कोई निकालना उसकी बात नहीं है, तो हमको 4 करना था
उसमें हमने एक
तो 8 जो प्रक्षेप है उसको 4 से भाग दिया हमने तो 2 आ गए, तो 3 + 2 = 5 गुणहानि इच्छित द्रव्य का आहार काल होता है। अभी उन्होंने इच्छित द्रव्य का आहार काल लिया, इच्छित द्रव्य उन्होंने पांच गुना नहीं तो आभार काल हुआ, इच्छित द्रव्य कहाँ बताया उन्होंने, देखो रूपाधिक इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना चाहिए, रूपाधिक इच्छित आयाम, यहाँ इच्छित आयाम ही 3 गुना ले लिया, हाँ आभार काल है जो हमने अभी निकाला था वो है, 5 गुना ने मात्र भागार की उत्पत्ति कराते समय वो अढ़ाई खंड करके वगैरह वगैरह करें, परंतु उसमें इच्छित आयाम तो 3 गुना नहीं तो हमारे इच्छित कहाँ है, वो ओरिजिनली था ही था, ऐसा कुछ घोटाला हो रहा है
यहाँ पे, वापस बता इच्छित द्रव्य का आहार काल, जहाँ पे 1 गुना नहीं प्रमाण जीव कम हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं उसका आहार काल निकल रहे हैं ना,
आधे होते तो उसका आहार काल डबल होता है,
डबल होता है
उसमें तो क्या कुछ चिंता ही नहीं ना। इच्छित आयाम 3 गुणहानी है,
ये 5 गुणहानि इच्छित द्रव्य का आहार काल बताया ना, तो हम लोग आधे हो जाते हैं तो डबल हो जाता है, और हम लोग परम
5 गुणहानि तो उसका भागहार है, और फिर आयाम आयाम कहाँ हमको मालूम है, अगर हम गुणहानि को आयाम कह रहे हैं तो भागहार घोटाला कुछ है इसमें,
तो असंख्यात गुणहानि जाने पर जो द्रव्य मिलता है जीव का प्रमाण उसका आहार काल निकालने के लिए ये सूत्र लागू कर सकते हैं, इसे बता रहे हैं,
वही तो कह रहे हैं, परंतु जैसे हमारा 3 गुणहानि भागार किसका था 128 का, और उसके आदि 64 का जो भागार हो जाएगा वो तो 6 गुणहानि होगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बीच वाले निषेकों की बात है यहाँ पर, हमको 5 गुणहानि चाहिए कि 4 गुणहानि चाहिए उसकी चर्चा चल रही है, अभी जो हमको मालूम है उसका निकालो ना, जो मालूम है उसको निकालो, अभी हमको रूपाधिक इच्छित आयाम जो चाहिए हमको विस्तार का अपहृत करना चाहिए, जैसे हमको 96 चाहिए था, जो हमने ऑलरेडी निकाले उसको यहाँ फिट करके देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो तो हमको मालूम था ना
96 द्रव्य,
द्रव्य 96 है,
उसका आवार काल कैसे निकालेंगे?
इच्छित आयाम से विस्तार को अपरूत करना चाहिए। इच्छित आयाम, फिर आयाम वो गुणहानि को कह रहे,
कुछ घोटाला यहाँ पे
ऐसे कुछ घोटाला हो रहा है। देखो इच्छिद इच्छिद आयामे नहीं रूव जुदेन अवहरेज विखंबम, अभी विष्कम्ब किसको कहना और ये किसको कहना इसी बात है। नाइन्टी सिक्स को उल्टा चलेगी ना हम, यानी समझो ना विस्तार हमारा 128 है, उसको हमने 96 का भाग दिया रूपाधिक इच्छित आयाम लिया, उसमें एक रूप अधिक करना है, वो कैसे करेंगे? यानी रूपाधिक किस में मिलाना, गुणहानि में मिलाना कि किस में मिलाना? अगर हम ऐसा करेंगे ना ये फिट नहीं हो रहा है कुछ, क्योंकि उन्होंने इच्छित आयाम तीन गुणहानि बता दिया है और विष्कम्भ प्रक्षेप 8 है, 3+1 4 हो गया, 8 को 4 से भाग दिया 2 हो गए, 3 में 2 5 गुणहानि इच्छित द्रव्य का आहार काल है, यानी इच्छित द्रव्य का आहार काल हुआ, परंतु इच्छित आयाम तीन गुना नहीं रखे।
पर इच्छित द्रव्य का आहार काल निकालने के लिए हम लोग को बाकी की फैक्टर्स भी बांधू बनाते हैं ना,
पर इच्छित द्रव्य कहाँ लिखा है इसमें? यही तो मुझे कहना है, कुछ घोटाले है नहीं
तो एग्जैक्ट
उनका किसको क्या कह रहे वो समझ में नहीं आ रही बात। उन्होंने उदाहरण तो फिट करके बताया, नहीं और ऊपर क्या लिखा है, इस प्रकार गुणहानि के सब स्थानों के समाप्त होने तक जानना चाहिए। वो तो 5 गुणहानि के लिए लिया था, 5 गुणहानि के लिए हमने देखो रूपाधि की इच्छित आयाम से विस्तार को अपहृत करना चाहिए, रूपाधिक करके उसमें तो गुणहानि को ही उन्होंने आयाम इच्छित आयाम बताया।
तो यहाँ पे इच्छित आयाम 3 फिक्स ले लिया है, गुणहानि 1। अरे हम लोग ने जो यौवध्य को जो भाग दिया था 3 गुणहानि से वो फिक्स रख दिया, और उसके साथ पीछे द्रव्य कितना गुना आधा हुआ उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं।
कैसे कैसे?
हम लोग की ओरिजिनल 3 गुणहानि का आधार है।
हाँ 3 गुणहानि हमारा 128 के लिए था। हाँ,
बराबर।
हाँ,
अभी द्रव्य हो गया 96।
हाँ द्रव्य हुआ 96,
तो 128/96 वो गुण उससे
3/4 हुआ ना, वो क्या हुआ?
3/4 हुआ, तो वो
उसका 3/4 हुआ,
प्रोपोर्शन हो गया, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं ना इच्छित द्रव्य का आवार का।
कैसे निकालेंगे? मगर यहाँ प्रक्षेपों में उन्होंने बताया, 128 को भागी नहीं दिया उन्होंने। देखो वो कैसे, वो कह रहे यहाँ प्रक्षेप यानी 8 प्रक्षेप है,
हाँ।
और यहाँ 3 गुणहानियां है, इस तरह से ले रहे हैं,
हाँ।
8 प्रक्षेप और यहाँ 3 गुणहानि। अब यहाँ कहते इच्छित आयाम से विस्तार का अपहृत करना चाहिए। अगर हम इच्छित आयाम हमको मान लेते ना 4 गुणहानियां चाहिए, 4 गुणहानियां चाहिए, तो 8 को 4 से भाग 5 से भाग 4 गुणहानियां चाहिए,
4 गुणहानि चाहिए तो 128 को
इच्छित आयाम अगर 4 हो 5 से भाग देंगे एक मिनट मैं करके देखती हूँ। इन्हें पांच से आठ को आठ प्रक्षेपों को भाग दिया, आठ पंचमोश जो कुछ हुए। उसको क्या करना है, उसमें दीर्घता को मिलाने पर,
आठ पंचमोश को हम लोग को जो तीन गुणा दिए उसमें मिलाने का पड़ेगा ना, ऐसे ही बता रहे हैं।
उन्होंने तीन गुणानी में एक मिलाया, चार आ गए, चार से प्रक्षेपों को भाग दिया तो दो आए, और दो उन्होंने फिर गुणानी में मिला दिया, ऐसा कर रहे हैं ना। अभी उसी की पद्धति भी अभी हम यहाँ अगर भाग देते हैं हाँ, अगर तीन गुणानी लिए उसमें चार करके आठ को भाग दिया तो दो आ गए, दो गुणानी है तो इच्छित द्रव्य के कहाँ मिल गए, ये समझ में नहीं आ रहे। अपने एक क्षेत्र फाड़ कर करना आसान लगता है हाँ, उसी को उन्होंने बताने की कोशिश की है, परंतु यहाँ आयाम भी इच्छित लिया हाँ, उसको डिवाइड करेंगे परंतु यानी आयाम को तीन गुना नहीं किया और फिर पांच गुना नहीं इच्छित द्रव्य का आहार कर लिया। ये तो गुनहानी तो उतनी रखी ना, और फिर आहार काल तो हम गुनहानियों में ही गिन रहे, तो फिर इच्छित गुनहानी क्यों कहा उसमें, आहार काल गुनहानियों में आ रहा है तो इच्छित गुनहानी क्यों कही, ये कहना चाहते हैं। या इच्छित आयाम तीन गुना, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। हम आगे बढ़ेंगे, यानी इस प्रकार गुणानी के सब स्थानों के समाप्त होने तक जानना चाहिए, क्योंकि इच्छित गुणानी ऐसा हो सकता है इच्छित आया मैंने, वो कौन सी गुणानी की बात चल रही है पहली की दूसरी, क्योंकि वहां के प्रक्षेप भी अलग अलग हो गए, जिस गुणानी की बात है हाँ पहली गुणानी दूसरी, इस तरह से भी हो सकता है।
हम लोग टोटल द्रव्य को इच्छित द्रव्य से
नहीं, अभी इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, आप जरा विचार करना इस पर बात में।
नहीं मेरे को नहीं, क्या
नहीं, नहीं 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 मैं बता रही उसमें क्या है, अगर क्योंकि यहाँ जो लिखा है उसका सही अर्थ नहीं ख्याल में आ रहा है, क्योंकि सबको इच्छित किया, आयाम को भी इच्छित किया,
दो और फिर इच्छित किया हाँ, इसलिए हम लोग को
इच्छित आहार काल भी इच्छित किया और फिर इच्छित द्रव्य का आभार काल आता है, ऐसा भी कह दिया, फिर उसको इच्छित आयाम क्यों कहा, ये सब कंफ्यूजन है। यानी उदाहरण जो है वो बाद में लिखा गया है, यानी उसका जो अर्थ कर दिया है वो बाद में लिखा गया है, इसलिए उसका सही अर्थ हमको भाषित नहीं हो रहा है, ये कह रहे। भले उनकी मूल गाथा तो है ही है, परंतु उसका जो उन्होंने अर्थ कर दिया है उदाहरण लेके, वो घटित नहीं हुआ, हमको नहीं घटित हुआ,
ख्याल में नहीं आता है सूत्र का
हाँ। अभी आगे बढ़ेंगे, कुछ तो क्वेश्चन मार्क करेंगे ना। अब द्वितीय गुणहानि की, अभी तो ये तो आसान है ना, देखो पहली गुणहानि का पहला निषेक 128 का था, दूसरे गुणहानि का पहला निषेक 64 होगा, तो द्रव्य आधा हुआ तो आहार काल डबल हुआ, तो द्वितीय गुणहानि के प्रथम निषेक के प्रमाण से अपहृत करने पर छह गुणहानियां भागार होता है, क्योंकि पहले के क्षेत्र को मध्य में फाड़कर, अभी ये आसान है ना, आधा करो और ये आगे एक साइड बाय साइड उसको जोड़ दो, पार्श्व भाग में मिलाने पर यो मध्य से अर्ध भाग प्रमाण विस्तृत और छह गुणहानी आयत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आयाम का अर्थ थे गुणहानी को ही आयाम कह रहे हैं उसे, अथवा एक गुणहानी आगे गए है इसलिए एक रूप का विरलन करके, हम क्या कहते हैं जितनी गुणहानियां हैं उतनी बार दो लिखकर आपस में गुणा करो जो अन्य भस्य राशि, अभी एक ही गुणहानी आगे गए है तो दो ही रखना है उसमें, तो विरलन करके दुगुणित कर अन्योन्य गुणित राशि से, यानी यहाँ दो से तीन गुणानियों के गुणा करने पर, यानी यहाँ जो जितने नंबर की गुनाही है मान लेते दूसरी है, तो वहाँ अन्योन्य व्यस्त ऋषि चार हो जाएगी फिर से। ये बीच में 128 है, 64 से दूसरी गुणहानी होती है, 32 से तीसरी गुणहानी होगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी वो 32 ये तीसरी गुणहानी का पहला निषेक है। कितनी गुणहानियां ऊपर गए ऐसा कहना है, यहाँ तो एक गुणहानी ऊपर गई तो आधा हुआ है। तो यहाँ का भागहार तीन गुणहानियां था, भागहार का प्रमाण वो यहाँ डबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रति गुणहानि उसका अन्योन्य भस्य राशि से गुणा करना, तो यहाँ तीन को दो गुणा करने से छह हो जाएगा। अभी डायरेक्ट यहाँ तीन गुणहानि है और ये दो गुणा दो अन्योन्य भस्य चार हो गया, तो इसको चार गुणा करके यहाँ 12 हो जाएगा। जितनी संख्या ऊपर जाते, मान लेते पांचवी गुणहानि है, पांचवी गुणहानि है तो चार बार ऊपर चढ़ा, चार बार आधा आधा हुआ, तो वैसे उसके अन्योन्य भस्य राशि लेना है। देखो यहां हम पेज नंबर 93 पर पढ़ रहे हैं, ये जो नया पैराग्राफ है ना वो तो हमने देखा था। तो कहते अथवा कहके चौथी लाइन वहां से पढ़ेंगे, अथवा, क्योंकि पहले तो आधा करके फाड़कर बाजू में जोड़ देना वो तो देखा था हमने। एक गुणहानि आगे गए है, मध्य से एक गुणहानि आगे गए ना, दूसरी गुणहानि का अर्थ क्या है? एक गुणहानि आगे गए, उसको हम दूसरी गुणस्थान गुणहानि कह रहे हैं, परंतु कितने स्थान आगे गए? एक स्थान आगे गए, इसलिए एक रूप का विरलन करके, यानी एक रूप रखो, दुगुणित करना दो हो जाएगा, इसी को अन्योन्य गुणित रहे वो दो ही है, तीन गुणहानियों के गुणा करने पर, यानी 2×3 हो जाएंगे, छह गुणहानियां उत्पन्न होती है। ये तो आसान है ना, शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए इस गुणहानि की भी पूर्व से कही गई गणित प्रक्रिया सब कहना चाहिए, यानी दूसरे गुणहानि का पहला निषेक, वहां प्रक्षेप का प्रमाण 8-8 होता है, तो ऊपर का विरलन करना, फिर नीचे 8 का विरलन करना, फिर उसमें से कम करना, वो सारा प्रक्षेप एक एक खीन करना, तो जितना ऊपर का विरलन है उतने प्रक्षेप में से 7 में से एक निषेक होगा, तो इसमें से कितने होंगे, ये सब घटित होगा, क्योंकि वहाँ 6 गुणहानि है ना, यानी सैचुक 24 हो जाएंगे, 24 बार एक एक लिखना पहला निषेक, दूसरा निषेक हम घटित कर रहे हैं। देखो कैसे करना है, जैसे हमने पहले 12 को विरलन कर दिया है 128 के लिए, अब क्या करना है यहाँ पर, हमारा पहला निषेक 64 का है, अब यहाँ की उसका भागहार कितना है, अवहार 6 गुणानिया, यानी साइचुक 24, तो एक एक हम 24 बार लिखेंगे और उसमें 1536 डिवाइड करके देंगे, तो हर एक के ऊपर 64 आएंगे। यहाँ तक ख्याल में आई बात? अब यहाँ दो गुणहानियों का नीचे विरलन करो, 8 बार एक एक लिखो,
64
और 64 उसमें दे दो, तो हर एक के ऊपर
8-8
आएंगे,
8-8 आएंगे।
यहाँ तक समझे? अब इसमें से हर एक में से 8 कम कर दो, 64 में से 8 कम कर दो, कितने रहेंगे?
56
रहेंगे, यानी हमारा निषेक यहाँ का 56 वाला ही है, दूसरा निषेक 56 वाला है, हर एक में से 8-8 निकाले तो हमारे पास कितने 24 तो निषेक मिल गए, 56 वाले 24 तो मिल ही गए, इन एडिशन कितने मिलेंगे, क्योंकि हर एक में से 8-8 एक एक प्रक्षेप निकाला है, 7 प्रक्षेप जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8×7 56
हो जाएगा,
तो हमने क्या किया, ये द्वितीय गुणाने का द्वितीय निषेक हमको निकालना है, इसलिए द्वितीय गुणाने का भागहार जो छह गुणहानिया साइचोक 24, तो एक एक को 24 बार लिखा और पूरे द्रव्य 1536 उसमें बांट दिया, तो हर एक के ऊपर 64 आ गए। एक 64 को हमने दो गुणहानियों में बांट दिया तो 8-8 आए प्रत्येक। वैल्यू समझने के लिए है। अब क्या करेंगे, हर 64 में से हम 8-8 निकालेंगे तो 56 बाकी रहेंगे, वो दूसरी गुणहानि का दूसरा निषेक है। यानी हमें 24 बार तो 56 मिल ही जाएगी, इन एडिशन कुछ तो मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हर 8 में से 7 प्रक्षेप लेते हैं, 8 में से 7 लेते हैं तो हमको एक निषेक मिलेगा 56 का, एक 56। ऐसे हमारे पास 24 बार हमको 8 मिले हैं, तो 24 बार है तो सात्विक 21, तीन तो एक्स्ट्रा हो गए और आगे का अपूर्णांक रह गया। तीन सप्तमांश 24 को हमको 7 से भाग देना है, तो सात्विक 21 और तीन सप्तमांश, इतने निषेक एक्स्ट्रा हो गए, वो 24 में मिलाएंगे हम। 24 प्लस 3.3 सो 27.3 उसमें निषेक मिलेंगे, भागार नहीं उतने निषेक मिले। वहां की संख्या उसको अगर भागार करना है तो उतने गुणहानियां हम कहेंगे उसको, उसका भागार कहेंगे, वहां का निषेक का 56 वहां का निषेक है और 27 ये तीन गुणहानियां थे ना, ये 24 तो तीन गुणहानियां थे उसमें, इतने मिल दिए
27
गुणानी नहीं के
27 गुणानी 3.7 भागार हो जाएगा ना।
हाँ, पर वो तो हम गुणानी को खोल कर बताए, गुणानी में कहना है तो गुणानी प्लस इतना कहेंगे हम।
हाँ, गुणानी
क्योंकि उसके प्रक्षेप के और गुणानी के एग्जैक्ट वैल्यू फिट नहीं होती है, समझ में आई। तीन तो प्रक्षेप अंक बढ़ गए, ये उसका कहना है। अब इसी तरह से आगे भी हमने जैसे 96 का वगैरह निकाला, इसमें भी हम वो क्षेत्र की अपेक्षा कह सकते हैं। जैसे हमने वर्टिकली 64 किया और यहाँ 6 गुणहानियां होंगे, ये 64 वाला पीस और 6, पहले 3 गुणहानियां लेते थे अभी 6 गुणहानियां ली, अभी उसमें भी दूसरा तीसरा ऐसा निषेक लेना है हमको। अभी इसका तीसरा निषेक है ने 8 प्रक्षेप दो बार कम कर दिए, 8 और 8 कम कर दिए तो कितने कम हो गए, 16 कम हो गए,
16 में से
इसमें से कम करना 64 में से, तो 16 कम हो गए तो तीसरा निषेक आएगा। यानी 16 का एक पीस निकाल दिया, तो 16 का एक पीस निकाल दिया तो उसको यहाँ फिट करना है। 8-8 वाला एक एक प्रक्षेप होता है, या हम ऐसे भी कहेंगे ना, इसकी वर्टिकल 1/4 है ना ये, तो ऐसे वर्टिकली 4 अगर पीसेस निकालेंगे तो इसमें
एक गुणहानि बढ़ेगी।
वर्टिकली ये 16 है और अढ़ाई एक गुणहानि है, ऐसे वर्टिकली हम ये 16 16 16 16 ऐसा करेंगे और उसकी विड्थ एक गुणहानि है। देखो ये 16 के एक एक पीस यहाँ फिट किए, अब कितने रह गए, 2 पीस शेष रह गए, 16 और 1 गुणहानि 16 और 1 गुणहानि, हमको 4 चाहिए, उसका आधा करो
और साइड में लगा
उसके ऊपर, तो आधी गुणहानि और बढ़ेगी, यानी ये 6 गुणहानि और ये 1.5 गुणहानि हो जाएगी और 7.5 गुणहानि हो जाएगी, समझ में आएगी बात। इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, शिष्यों की बुद्धि को विकसित करने के लिए इस गुणानी के भी पूर्व में कही गई गणित प्रक्रिया सब कहना चाहिए। इसके आगे की गुणानी के प्रथम निषेक का भागहार, उसके आगे के गुणानी का प्रथम निषेक 32 होता है, वो 128 का चौथा भाग हो गया 32, तो भागहार 4 गुणा हो जाएगा, है ना? हाँ, या 2 गुणानी आगे गई है ना। तो प्रथम निषेक का भाग है बारह गुणिया न्याय, क्योंकि यव मध्य प्रमाण विस्तृत क्षेत्र की चार फालिया करके पार्श्व भाग में मिलाने पर बारह गुणानियां उत्पन्न होती है। ये उसकी वैसी बात, अभी हमने जैसे ना चौथा भाग निकालो और वहां फिट कर दो, इस तरह से यव मध्य प्रमाण विस्तृत क्षेत्र लिया। पहले जो 128 हमने देखा था, 128 उसके प्रमाण, हाँ 128 और यहाँ तीन गुणानियां थी, तो उसमें से अभी हमको कितना देखो, चार फालियां कर दो, क्योंकि हमको 32-32 के एक एक चाहिए। तो ऐसे हमने, हमको तो 32 ही चाहिए वहां का, तो ये सारे एक के आगे एक के आगे एक लगा लो, तो ये तीन गुणानियां थी, वो तो 12 गुणानियां हो जाएगी। ये समझ में आती बात, नहीं समझे? 128 टोटल मध्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास पीस कितना है टोटल कपड़े का, 128 और यहाँ तीन गुनानियाँ, तो उसमें से 32 इंटू तीन गुनाई ऐसे तीन चार पीसेस किए, और वो अरे ये हाँ देखो, ये 1 2 3 4 नीचे से ऊपर थे, अब वो ऐसे आड़े एक लाइन में कर दो 1 2 3 4, तो कितने लंबा होगा, 12 गुणानिया लंबा होगा और 32 उसकी हाइट होगी। ख्याल में आई बात, यही कहना चाहते हैं। अथवा तीसरी गुणानी का अर्थ है कि दो गुणानिया आगे गए है ना, इसलिए दो संख्या का विरलन करके द्विगुणित करना, यानी दो गुना दो, परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, यानी चार होती है ना, उससे तीन गुणानियों को गुणित करने पर बारह गुणानियां उत्पन्न होती है। आगे साधिक बारह गुणानियां भागहार है, जब तक आगे की गुणानी नहीं होती तो साधिक बारह कहते जाएंगे हम। इससे आगे की गुणानी के प्रथम निषेक का भागहार 24 गुणानियां होती है, क्योंकि संख्या आधी होती है तो भागहार डबल, तो 12 के बदले 24 हो जाएगा, क्योंकि पूर्व क्षेत्र के विष्कम्भ के आठ खंड करके उनमें सात खंडों को आयाम में मिला देने पर 24 गुणानियां उत्पन्न होती है। ये क्या कहना चाहते हैं, हमारा ओरिजिनल कपड़ा वो था ना 128 बटे तीन गुणानियां, अभी 128 के हमने आठ टुकड़े कर दिए, तो एक एक की हाइट उसकी 16 हो गई, तो नीचे से 1 2 3 4 आठ पीस हुए, वो यहाँ आगे जोड़ देना, तीन गुनानिया तीन गुनिया तीन गुनानिया आठ बार कर देना, तो 24 गुनानिया हो जाते हैं। ये समझ में आ रही बात, उनके ये क्षेत्र की अपेक्षा वो फाली करके जोड़ देना, वो समझने में आसान हो जाता है। अथवा दूसरी पद्धति क्या है, चौथी गुनहानी का अर्थ क्या है, तीन गुनहानिया आगे गए, यानी तीन बार आधा अधिक आधा अधिक आधा हुआ, तो हम कहेंगे दो गुना दो करो, अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो, इसलिए तीन की अन्योन्य अभ्यस्त राशि आठ से, उससे राशि से तीन गुणानियों को गुणित करने पर आठ त्रिक 24 होते हैं, 24 गुणानियां उत्पन्न होती है। ऐसे ही आसान है ये समझना। अभी यहाँ तो हमारे पास पांच गुणानियां ऊपर है, वैसे तो ओरिजिनल में असंख्यात है। इस प्रकार जितनी जितनी गुणहानियां आगे जाकर का बात है, यानी जो नंबर हम दसवीं गुणहानी है तो नौ बार आगे गए हैं, ये उसका अर्थ होता है। तो जितनी जितनी गुणहानियां आगे जाकर भागहार इच्छित हो, उतनी उतनी मात्र गुणहानी शलाकाओं का विरलन कर, यानी अभी दसवीं गुणहानी है तो नौ बार आगे गए हैं, तो वहाँ हाँ उतनी मात्र गुणहानियों का विरलन कर, यानी नौ का विरलन करेंगे, नौ बार दो दो लिखेंगे, आपस में गुणा करेंगे, विरलन कर दुगुना करके अन्योन्य अभ्यस्त राशि से तीन गुणहानियों को गुणित करने पर, अथवा उसी राशि से यव मध्य के विस्तार को खंडित करके पार्श्व भाग में मिला देने पर भी वहाँ का आभार काल होता है ऐसा जानना चाहिए। हमने देखा ना अन्योन्य, हमने जैसे ऊपर की गणित में देखा चौथी गुणहानी थी, यानी तीन गुणहानियां आगे लिए हैं, तो वहां की अन्योन्य अभ्यस्त राशि आठ थी, इसलिए 128 के भी हमने आठ टुकड़े करके एक के आगे ही जोड़ दिए थे। ऐसे यहाँ पर भी वही पद्धति आती है, जितनी अन्योन्य अभ्यस्त राशि का प्रमाण हो उतने टुकड़े कर दो और वो एक के आगे एक जोड़ दो, वही बात होगी। उसी का अर्थ उसको उतने गुणा करना है ना, तीन गुणहानियों को उतने गुणा करना है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार इस विधान से रूप कम जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आगे जाने तक यह क्रम जानना चाहिए। इसी प्रकार आगे भी जानना चाहिए, विशेष इतना है कि इससे आगे की गुणहानियों में सर्वत्र असंख्यात गुणहानियां आभार काल होती है। हमने लास्ट टाइम कुछ उसमें जघन्य परिता संख्यात वगैरह से कुछ लिखा था उसमें, परंतु देखो मैं क्या कहना चाहती है, रूप कम यहाँ घटित नहीं हो रहा, ये मुझे कहना है। ऊपर प्राकृत में चलो, नीचे से छठी लाइन, यानी अभी ऐसा ही चल रहे हमने, भागहार दोगुना 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 हो रहा है, फिर भी संख्यात है। असंख्यात कब हो जाएगा उसकी चर्चा है, कहाँ तक वो संख्यात ही भागा रहेगा उसकी चर्चा है। तो कहते कि ये दुगना 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 होते हुए, पर मैं नीचे से छठी लाइन पढ़ाना चाहती हूँ, प्राकृत में एवं अनेन विहाने न, यानी इसी विधान से नेदवम जानना चाहिए, जाव जब तक तब तक, कब तक, दुरूण जहन्न दुरुवऊण, उसका कहते दो रूप कम, एक रूप कम नहीं लिखा यहाँ, नीचे रूप कम लिखा है, वहाँ दो रूप कम होना चाहिए। और वो कैसा मैं घटित करके बताती हूँ आपको, दुरुव उण जहन्न परिता परिता संख्यज छेदनय मेत्तियो गुणहानियो उवरी चढ़िदावोत्ति। क्या कहना चाहते हैं, हम उसकी कोई भी संख्या मान लेते हैं, जघन्य परिता संख्यात के लिए हम 16 मान लेते हैं, यहाँ क्या कहना चाहते थे, जघन्य परिता संख्यात हमने 16 माना, यहाँ क्या लिखा है नीचे पर हिंदी में, इस प्रकार इस विधान से हम रूप कम करके देखेंगे और फिर दो रूप कम करके भी सिखा आपको बताएंगे। रूप कम करेंगे अगर जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर, यानी इसके अर्धच्छेद है 4, इसमें से रूप कम यानी तीन गुणहानियां हो जाएगी, बराबर गुणहानियां आगे जाने तक, आगे यानी वो चौथे नंबर की हो जाती है, यानी उसमें से उतने बार आगे गए ना तक, यह क्रम जानना चाहिए। तो अगर हम तीन कहते हैं तो वहां की तीन गुणहानियां यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 हो जाती है, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 हो जाएगी अगर, और उसको तीन गुणहानियां हमारा ओरिजिनल था, उसको अगर तीन गुणहानियां से गुना करते हैं तो हमारी वहां की 24 प्रमाण आ जाएगा,
ये 16 से बहुत बड़ी,
16 से ज्यादा है, समझ में आती है बात। अगर हम दो रूप कम करते तो देखो, इसके बदले दो रूप कम कर दो, यानी वो असंख्यात वही पर असंख्यात हो जाता है, हमको उसके नेक्स्ट वाली असंख्यात हो जाता है उसका भागा। अगर दो रूप कम करते 4 में से तो दो संख्या आती है, और दो के अन्योन्य अभ्यस्त राशि 4 होती है, 4 × 12 करेंगे तो 16 से कम रहता है, यानी यहाँ दो रूप कम होना चाहिए, ये लास्ट टाइम ख्याल में नहीं आया था हमारे, ये दो शब्द डालो क्योंकि ऊपर लिखा है ना दुरून जहन्न, दो रूप, रूप के पहले उसमें कुछ है आपकी पुस्तक में, नीचे क्या लिखा है,
लास्ट टाइम हमने करेक्शन किया ही नहीं था,
नहीं किया।
तो वहाँ पे नहीं आया था, लास्ट टाइम हमने नहीं लिखा था,
नहीं वो हमारे ख्याल में ही नहीं आया था,
पर हमने ऊपर पढ़ा ही नहीं था, पर
नहीं, नहीं उसमें क्या आपकी पुस्तक में रूप कम ही लिखा है ना, हाँ तो दो रूप कम, और उसके लिए अंडरलाइन करो ऊपर प्राकृत में, दो शब्द
दूर
क्योंकि एक रूप कम करने से वो बात घटित नहीं होती, क्योंकि आगे उसको तीन गुना करना है ना। जघन्य परिता संख्यात में से केवल एक कम करेंगे
अर्धच्छेद में से, जगते परिता संख्यात से बोलते
हैं उसमें एक ही कम करेंगे तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि में दो का डिफरेंस होगा, दो गुना का डिफरेंस पड़ेगा और फिर आगे उसको तीन गुना करना है वन तभी वो असंख्यात में चली जाएगी। इसलिए दो रूप कम करके उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी चाहिए। इसलिए दो लिख लो वहां पर, दो रूप कम करना चाहिए। फिर से
जगन्य परिता संख्यात को दो बार आधा करके तीन गुणा।
अरे 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 ऐसा मत सोचो, जगन्य परिता संख्यात के अर्ध छेद की बात है। जगन्य परिता संख्यात को उसके अर्ध छेदों को दो कम करना,
अर्ध छेद को दो
वही तो कह रही मैं। मैंने 16 के अर्ध छेद चार में से दो कम कर दिए थे और फिर उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो।
हाँ आगे लिखा है अर्धच्छेद को,
यहाँ लिखा ना
बराबर गुणिया में आगे
तो देखो ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार इस विधान से दो रूप कम जघन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों के बराबर गुणहानियां आने जागे तक यह क्रम जानना चाहिए, यानी दो रूप कम करके फिर उसके अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालो। हाँ प्राकृत नीचे से छठी लाइन प्राकृत का रेफरेंस दूर ऊण जहन दो रूप कम नीचे से छठी लाइन क्योंकि वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि जितनी आती है उसको तीन गुणहानियों से गुणा करना है। देखो देखो मैं अपनी और दूसरी बात बताती हूँ। जो हमने अभी ये 16 का ही उदाहरण लिया था ना, सोलह के अर्धच्छेद हमने चार देखे थे, यानी चार अर्धच्छेद जहां है उसकी मूल राशि 16 होती है। अगर हम उसके रूप कम यानी तीन अगर हम देखते हैं अर्धच्छेद एक ही कम किया यानी तीन अर्धच्छेद लेते हैं तो तीन अर्धच्छेद की मूल राशि 8 होती है और उसको तिगुणा करने पर 24 जो होते हैं वो 16 को ये कर देते हैं। इसलिए दो रूप कम करने से क्या होगा, जो दो रूप कम कर दिए तो दो रहेंगे, दो जिसके अर्धच्छेद यही संख्या कौन सी होती है 4, यानी अर्धच्छेद में से दो कम करने से वो राशि चौथे भाग प्रमाण होती है और उस राशि को तिगुणा करना है वो तो 16 से कम ही होने वाली है। जहां अर्धच्छेद में से दो कम कर दिए वहां मूल राशि चौथे भाग प्रमाण होती है और फिर उसको तिगुणा करना है। चार गुणा करते तो जघन्य परिता संख्यात होता, तिगुणा किया तो जघन्य यानी वो उत्कृष्ट संख्यात में ही रह गया, उसका नेक्स्ट स्थान
असंख्यात
में चला जाएगा क्योंकि हमने देखा उसका नेक्स्ट स्थान का अर्थ क्या होता है। हाँ ये वाला तीन जिसका अर्धच्छेद है ऐसा वो 24 में चले, यानी वो जघन्य परिता संख्यात को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, ये कहना चाहते हैं। यानी हमने जो दो शब्द डाला वो बराबर है। अब नीचे का पैराग्राफ, उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से, अभी लास्ट वाला लिया उत्कृष्ट योग स्थान, हमारी संदृष्टि में कितना था याद है
5
वाला, 4 वाला नहीं लेते क्योंकि 4 वाला नेक्स्ट गुणाने का पहला निषेक होता है, यहाँ आधा नहीं आधा का आधा नहीं कर सकते, यानी वो एग्जैक्ट उसको गुणहानियों को अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणित नहीं करेंगे, गुणित करके उसमें से कम करना पड़ेगा। ये समझ में आई ना बात, जैसे हमने देखा ना तीन गुणहानियां है और 6 गुणहानियां कब होते हैं 64 में, 64 में होते हैं परंतु वो क्या है दूसरे गुणहानी का पहला निषेक है, उन पहले गुणहानी के अंतिम निषेक में 6 से कुछ कम होगा कि नहीं, ऐसे यहाँ कहते हैं उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपरत करने पर असंख्यात गुणहानियां आहार काल होती है, क्योंकि अभी हमने देखा था जहाँ जघन्य परिता संख्यात के भी ऊपर चढ़ गए तो वो और दुगुना 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 होते कितना बड़ा असंख्यात हो जाएगा। तो उत्कृष्ट के लिए भी कितने असंख्यात गुणहानी यथा योग्य, क्योंकि ये वो मध्य के आगे की सब गुणहानी शलाकाओं का विरलन करके अभी आगे की कहा। अभी हमारे संख्या में 5 गुणहानियां ऊपर थी, उत्कृष्ट स्थान तक 5 गुणहानियां थी, तो यवोमध्य के आगे कितनी गुणहानी आई? 4 आ गई। सब गुणहानी शलाकाओं का विरलन करके दुगुणित कर कुछ कम, अगर हमको 5 का निकालना है तो दुगुणित कर कुछ कम। यवोमध्य के आगे की लिखा है परंतु यवोमध्य को लेकर वो 5 गुणहानियां उन्होंने काउंट की। यहाँ समझाने के लिए ऊपर की 5 गुणहानियां है तो 5 को उन्होंने अन्योन्य अभ्यस्त राशि 32 निकाला, पर उससे कुछ कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम 32 से गुणा करते हैं
वो 5 से कम हो जाएगा
तो ऊपर की संख्या आ जाएगी। ऊपर की गुणहानि का पहला निश्चय का नाप चाहिए, वो 4 आ जाएगा। नहीं समझे? यहाँ क्या कहा, ऊपर 5 गुणहानियां है, पहली गुणहानि का आवार काल 3 गुणहानियां, दूसरी का 6 गुणहानियां, तीसरी का 12, चौथी का
24,
पांचवी का
48
है ना। और उसके आगे चले जाते तो अगर 4 में चले जाते तो 4 नहीं, वहाँ का निषेक ही कम हो गया ना। यहाँ का कितना था पहला निषेक? 8 था, 8, 7, 6, 5 था, और वो 8 का आधा 4 हो जाता तो वहाँ की गुण और बढ़ती है, पर यहाँ वो नहीं लेना है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ 32 वो आई, परंतु वो अंतिम निषेक है ना, ये दूसरे गुणहानि का पहले निषेक में वो आधा आधा होता है, परंतु नीचे के गुणहानि के अंतिम निषेक में कुछ कम रह जाएगा उसमें। फिर से अभी जो हमको मालूम है उतने कर रही है ना, 128 यहाँ का है, 3 गुणहानियां उसका आवार काल है। जब 64 होता है तो 6 गुणहानियां हुआ, जब 32 हुआ तो 12 गुणहानियां हुआ। तो यहाँ कितनी गुणहानि होगी? 2 गुणहानियां आगे गए, तो 2 गुणहानियां आगे गए तो 2 × 2 = 4 हो गए। तो इसको हमने 4 से गुणा किया, 3 × 4 = 12 आ गए। यहाँ तक समझ में? पर ये 32 क्या है? 1 ये पहली दूसरी तीसरी गुणहानि का पहला निषेक है, दूसरे गुणहानि के अंतिम निषेक का क्या होगा? 12 गुणहानि से गुणा करेंगे कि कुछ कम 12 से गुणा करेंगे?
कुछ कम
12, ये कहना चाहिए
तीसरी गुणहानि का अंतिम निषेक लाने के लिए।
ये पहली, ये दूसरी, हम दूसरी की बात करें, तीसरी में और कम हो जाएगा। ये देखो, पहला यवोमध्य 128, दूसरी गुणहानि का पहला निषेक 34 64, तीसरे का 32। हम यही तक यही तो हमने बताया ना, तो
कुछ कम बारह
यहाँ का जो है, ये कैसे कैसे कम हुआ? 64 में 8 कम हुए, फिर 8 कम हुए, फिर 8 कम हुए, 4 बार 8
का द्रव्य लाने के लिए।
तो ये 32 से 8 ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ का अंतिम निषेक 40 है, तो 40 का अगर हमको भागहार निकालना है
तो
कुछ कम 12 हो जाए, यही यहाँ कहते हैं। वहाँ की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है उसके लिए ये बात होगी।
तो यहाँ पे जीव यवोमध्य है, यहाँ पे गुणानि या पर्यपम के असंख्या के बात प्रमाण है, गुणानि का प्रमाण पर्यपम के असंख्या के बात प्रमाण है। तो उसका बराबर आदेश करेंगे तो वहाँ पे यवोमध्य आ जाएगा जीव यवोमध्य, क्योंकि दोनों जगह प्रमाण तो सेम बताया है कि पल्य का असंख्या के बात प्रमाण जो गुणानि है योग यवोमध्य और जीव यवोमध्य, वहाँ पे भी कुछ फर्क होगा ना?
फर्क तो है ही ना, फर्क तो है।
वो पल्य का असंख्यात भाग छोटा होगा जीव यवोमध्य का, और योग यवोमध्य का पल्य का असंख्यात भाग बड़ा होगा। नहीं वो पल
एग्जैक्ट सेंटर कैसे आएगा?
नहीं आएगा,
ऊपर कुछ ज्यादा है ना।
हाँ।
उसका अर्थ क्या होता है?
एग्जैक्ट टू थर्ड और हाँ बराबर
समझ गए ना। 32 हमने स्थान देखे और नीचे की गुणहानी कितनी की गुणहानी? चार चार की गुणहानी थी, नीचे तीन गुणहानी, ऊपर पांच गुणहानी। उसका अर्थ ही क्या है? ऊपर ज्यादा
है,
हाँ, थोड़े ज्यादा है।
तो यहाँ पे जीव यव मध्य है, वहां पे भी योग यव मध्य आ जाएगा कि नहीं? नहीं आएगा ना,
ये बात पहले ही हो चुकी थी अपनी।
कल से
जीव योग मध्य में नीचे के गुणहानियों से ऊपर की गुणहानियां थोड़ी अधिक है।
हाँ।
काल योग मध्य में अभी वहाँ संख्या देखना, स्थानों की संख्या देखो।
हाँ।
स्थानों की संख्या यहाँ हमने विशेष देखे ना, क्योंकि नीचे तीन गुणहानियां प्रमाण स्थान है।
हाँ।
तीन गुणहानियों के टोटल कितनी हुई?
12
और ऊपर कितनी है?
5 गुणहानियां
20। 32 स्थान हमने माने थे, बराबर है? 12 × 2 = 24 नहीं है, इसलिए संख्या गुना भी नहीं होता, वो विशेष अधिक कहेंगे उसको। अभी ये यव मध्य में, काल यव मध्य में क्या देखा था? बीच में ही असंख्यात स्थान है, उससे असंख्यात गुना स्थान 7 वाले, उससे असंख्यात गुना 6 वाले, उससे असंख्यात गुना इस तरह से, वो असंख्यात गुना का डिफरेंस है वहां पर। वहां कोई एक पर्टिकुलर स्थान नहीं है, असंख्यात स्थानों को मिलकर वो यव मध्य कहा है। यहाँ एक विशिष्ट स्थान को यव मध्य कहा है। और वहां पर भी बताएं, नीचे की जितनी गुणहानियां है उससे असंख्यात गुना ऊपर की गुणहानियां है, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि मान लेते नीचे हम 7, 6, 5, 4 समय तक देखे, तो जितने 4 समय वाले योग स्थान थे उससे असंख्यात गुना 3 समय वाले, उससे असंख्यात गुना 2 समय वाले, यानी टोटल से असंख्यात गुना हो गए ना, क्योंकि सेंटर से दोनों और 4 तक तो समान थे मान लेते हैं, पर ऊपर और असंख्यात गुना और उससे भी असंख्यात गुना स्थान ऊपर रह गया। यही तो चर्चा चल रही है, जीव मध्य के ऊपर अंतर्मूर्त क्यों नहीं रह सकता? चर्चा वहीं से छिड़ गई थी, इसीलिए इतने सब सुननी पड़े अपने को। और अब जाकर आप सर प्रश्न पूछ रहे हैं ना। देखो क्या कहना चाहते हैं, फिर पढ़ती हूँ। उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहरण करने पर असंख्यात गुणहानियां अवहार काल होती है। हमारे गणित में 1536 मान लिए थे हमने, और वहां के जीवों की संख्या 5 है, तो हमने सब उसको भाग दिया,
असंख्यात गुणहानियां,
तो असंख्यात गुणहानियां आ गई, क्योंकि यव मध्य के आगे की सब गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके दुगुणित कर कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि किया ना, क्योंकि वो अंतिम निषेक है, उसके आगे की गुणहानी में वो उतना हो जाता। समझ में आई बात?
बराबर है।
देखो पांचवी गुणहानी का पहला, अभी हमारे पास ये यव मध्य 128, दूसरी गुणहानी 64, तीसरी गुणहानी 32 से शुरुआत होती है, चौथी गुणहानी 16 से, पांचवी गुणहानी 8 से, तो कितनी गुणहानियां आगे गए, तो यहाँ से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 गुणहानियां हुई, तो 5 का ही अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालते हैं। एक्चुअली अगर 32 से जो कुछ हमको उसका भाग देना है, तो वो 4 के लिए वो उसकी संख्या, ये 32 × 3 वो 4 के लिए संख्या आएगी, पर उसमें कुछ कम लेना है। तो देखो ऊपरी गुणहानियां 5, तो 5 बार एक एक लिख के उसके ऊपर 2, 2, 2, 2 करेंगे, तो उसको होता है अर्थ अन्योन्य अभ्यस्त राशि, उससे कुछ कम करना, उससे 3 गुणहानियों को गुणित करने पर उत्कृष्ट योग जीव भागहार उत्पन्न होता है। योग जीव भागहार का अर्थ होता है टोटल द्रव्यों को, टोटल जीवों को कौन सी संख्या से भाग देने पर उत्कृष्ट स्थान में जीवों की संख्या आएगी। ये उसका अर्थ होता है। तो यहाँ उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि 32 आती है, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि निकालनी है तो 128/5 किया उन्होंने, 5 × 15 = 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 32 के बदले 25 समथिंग ले लिया उन्होंने, तो 128/5 ये कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि है, उसको 3 गुना या 12 को गुना कर दिया तो 1536/5 आ गए, क्योंकि 128 को 3 गुना नहीं ऐसे गुणे करते तो टोटल द्रव्य आता है, और उसके बदले हमने 5 से भाग दिया उसका, तो ये उत्कृष्ट योग स्थान के जीवों की संख्या लाने के लिए भागहार होता है। अभी आगे, अब भागा भाग का कथन है, अभी आसान है ना, ये तो सब प्ररूपणा हमारी चल रही किसकी, जीव योग मध्य क्या समझाने के लिए। 61 पेज पर हमने देखा था, निकालो देखो, पहले बताया था जीव योग मध्य की प्ररूपणा करेंगे, 5 अधिकार बताएंगे, प्ररूपणा के बाद उन्होंने प्रमाण कहा था, प्रमाण के बाद सदेशाय श्रेणी कही होगी है ना, अनंतर उपनिधान और परंपरा उपनिधान, फिर अभी तक हम अवहार की बात कर रहे हैं, यानी एक एक निषेक का अवहार काल निकालना था वो, अब भागा भाग और अल्प बहुत्व, भागा भाग का सबसे छोटा है ना, 95 पेज पर कितने भाग प्रमाण, हाँ आसान है, यव मध्य के जीव, सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, असंख्यात वे भाग प्रमाण है, प्रतिभाग क्या है, प्रतिभाग 3 गुणानियां है, हमने देखा ना सब जीवों को 3 गुणानियों से भाग देने पर उसकी संख्या आती है, हाँ यथार्थ में 3 गुना है, कुछ कम 3 गुणानियां होता है ना, जघन्य योग स्थान के जीव, सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, असंख्यात वे भाग प्रमाण है, अभी उसके यथा योग्य वहां गुणहानियां कितनी हो ले जाना, हमारे गणित में हमने देखा था ना, वो टोटल उसके असंख्यात से भाग दो, वो असंख्यात का प्रमाण जुदा जुदा होगा ना, नहीं वो 128 के लिए है, यथार्थ में 3 गुणहानियां है, कुछ कम 3 गुणहानियां आता है यथार्थ में, पर वहां गुणहानियों का भी प्रमाण असंख्यातों में है, हमने कहा था वो भागहार को जो हमने उसका भागहार 128/7/11/64 हमने निकाला था ना, तो उसको हमने 8 गुना किया जघन्य स्थान का निकाला था, फिर वो जो भागहार का प्रमाण जो है वो तो सभी जीवों के असंख्यात भाग प्रमाण ही वहाँ के जीव हो गए, यहाँ तो भागहार नहीं कहने, यहाँ तो जीवों की संख्या कितनी है, टोटल जीवों का असंख्यात भाग, क्योंकि टोटल जीव है जगत प्रतर को प्रतरांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात से भाग देना, और एक एक स्थान में जीव है असंख्यात गुण श्रेणियां, कोई भी असंख्यात गुण श्रेणी का भाग असंख्यात वाला हो वो जगत प्रतर का असंख्यात भाग ही होगा, ये कहना चाहते हैं, संख्यात पे भाग तक नहीं जाएंगे, तो जघन्य योग स्थान के भी सब जीवों के असंख्यात भाग है, और उत्कृष्ट योग स्थान के जीव भी सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, सब जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, इसी प्रकार सर्वत्र कहना चाहिए प्रत्येक योग स्थान में जीव कितने हैं, हाँ तो टोटल जीवों के जो टोटल कौन से जीव लिए हमने, हाँ जिनकी हमने योग स्थानों की प्ररूपणा की थी उसके असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं, या सब जीव अगर लेंगे अब तो अनंत वाले जीव इसमें नहीं लेना है, नहीं तो अनंत वे भाग करना पड़ता, आगे अल्प बहुत्व या अंतिम जो अनियोग द्वार है ना उसका, किसका, वो 61 पेज पर जो हमने शुरू किया था उसका, जीव योग मध्य का अल्प बहुत्व 3 प्रकार का है, अब ये 3 प्रकार का अल्प बहुत्व किस पद्धति से बताते, तो यवो मध्य से अधस्तन अल्पभूत, यानी नीचे के जो निषेकों की, जो निषेक यानी योग स्थानों में जीवों की संख्या है उसका अल्पभूत्व, उपरिम अल्पभूत्व और उभयत्र अल्पभूत्व, यानी सबका मिलकर, नीचे ऊपर का मिलकर। अब पहले में पहले अधस्तन अल्पभूत्व बताएंगे, पहला नंबर। उनमें जघन्य योग स्थान के जीव सबसे स्तोक है, उसमें आप 1, 2, 3 नंबर डाल सकते हैं, 16 है उनकी संख्या। उनसे यवमध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं, 2 नंबर, जो 128 है, और हमारे उदाहरण में 8 गुणा है, तो जहाँ 4 गुणहानि को भी हमने असंख्यात कहा तो ये तो असंख्यात गुणे हो गए। गुणकार क्या है? यवो मध्य से अधस्तन सब गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है, जो कि पल्योपम के असंख्यातवे भाग मात्र है। यानी हमारे यहाँ जो नीचे 3 गुणहानियाँ, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि 8 हो गई, 16 को 8 से गुणा करने से 128 आते हैं। तो कितने गुणा है 16 से, वो कितने गुना है? तो नीचे की सब गुणहानियों की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है उतने गुना है। यथार्थ में वो कितनी है? तो पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। तीसरा पॉइंट, यव मध्य से अधस्तन और जघन्य योग स्थान से उपरिम जीव असंख्यात गुणे हैं। मैंने क्या कहते हैं, 128 के नीचे कौन से? तो 112 से लेकर नीचे 16 के ऊपर वाला कितना था? 16 के ऊपर 20 वाले थे ना, 16, 20, 24, 28 वगैरह थे, तो 112 से लेकर नीचे वहां तक के सभी की टोटल। तो वो कितनी होती है? तो यव मध्य से अधस्तन और जघन्य योग स्थान से उपरिम जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है? हाँ, इसको 3 नंबर देना। कुछ कम 1.5 गुणहानिया गुणकार है, इन दोनों के बीच वाले, जघन्य भी छोड़ो उपरिम भी छोड़ो, 128 भी छोड़ो 16 भी छोड़ो, 3 नंबर, जहां ब्रैकेट में 128 यव मध्य के जीव लिखा है ना, उसके बाद वाला जो सेंटेंस है यव मध्य से अधस्तन, वहां से 3 नंबर देना। उसके नीचे के लाइन में पूछा है गुणकार क्या है, कुछ कम 1.5 गुणहानिया गुणकार है। किससे किससे कंपेयर कर रहे हैं? 128 से वो कितने गुणा, ये पूछ रहे हैं। समझ में आती है? 128 को कौन सी संख्या से गुणा करने पर वो बीच वाले जीवों की संख्या आएगी, ये बता रहे हैं। तो कुछ कम 1.5 गुणानिया, क्योंकि 3 गुणानियों से गुणित करते हैं तो टोटल जीव आ जाते हैं, हाँ, इसलिए कुछ कम, क्योंकि नीचे कुछ कम ऊपर कुछ इस तरह से, जो कि जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण है, क्योंकि एक एक गुणहानि भी जगत श्रेणी के असंख्यातवे भाग, 1.5 गुना करेंगे तो भी उतना ही। उसकी संदृष्टि 75/16 है, इससे यव मध्य को गुणित करने पर अधस्तन सब जीवों का प्रमाण होता है। यानी 75/16 से 128 को गुणा करेंगे तो 600 संख्या
गुणानी का प्रमाण 75/16 बताया,
हाँ ले लिया उन्होंने, ये उन्होंने यहाँ उल्टा पुल्टा करके वो निकाला है संदृष्टि के लिए। देखो ये, इसके लिए हमने एक संदृष्टि देखी थी, शायद 76 पर थी का, देखो टाइम होने को आया है फिर भी, हाँ देखो जरा 76 पेज निकालो,
तो टेबल दिखा था ना भाई,
वो टेबल निकालो, अगर उसके हर एक कॉलम में 128 के पहले की 128 पकड़कर वो नीचे तक की सभी की टोटल करना है। पहले में पहले हमने जघन्य योग स्थान के जो 16 देखे, दूसरे नंबर पर यवमध्य के जीव 128 देखे, है ना, तीसरे नंबर पर ये दोनों के बीच वाले जीवों की संख्या निकालनी है। यानी वो कैसे निकालनी है, देखो बीच में जैसे वो 64, 80, 96, 112 मिलकर कितने होते हैं, 352 कुछ हुए थे मेरे ख्याल से, 352, फिर 32, 40 वो उसके कितने थे, उसके आधे हो गए ना, हाँ 176 और पहले के उसमें कितने थे, उसके आधे 88, परंतु अभी 88 में से 16 कम करो, क्योंकि हमें 16 और 128 के बीच वाले की संख्या निकालनी है, तो 88 में से 16 कम करो तो हाँ 72, तो इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, देखो 6 जीव आ गए, समझ में आई बात, वो टेबल निकालो, टेबल की संख्या 16 वाले कॉलम में 88 जीव है, उसमें 16 के ऊपर और 128 के नीचे की जीवों की संख्या निकालनी है, तो 88 में से 16 कम कर दो तो 72 रह गए, सेकंड कॉलम 32, 40, 48, 56 की संख्या होती है, 176, 64, 80, 96, 112 उनकी टोटल होती है 352, और इन सबकी टोटल करेंगे तो 600 आती है। यही अभी हम यहाँ पर चौथे पॉइंट पर देख रहे हैं। तो ये उनको गुणकार कैसे मिला डायरेक्ट, तो 600 128 से कितने ज्यादा है ऐसा निकालो उन्होंने, तो 8 का भाग होगा
ना 72 + 172 + 352,
क्या
अच्छा 176 है, सॉरी
देखो ये 75/16 कैसे निकाले उन्होंने कि 600 हमको मालूम है, वो 128 से कितने ज्यादा है, किससे गुणा है, तो 600/128 कर दो ना तो 75/16 आ जाते हैं। मैंने बोला ना ये डिराइव करके उल्टा करके निकाला है, यानी यहाँ बाजू में लिखी रहे पेज नंबर 76 फॉर चार्ट पेज 76, अभी उससे आगे का अल्पभूतव कल देखेंगे, क्योंकि अभी तो अपना समय हो गया, ये अल्पभूतव पहले से फिर दोबारा लेते हैं यहीं से, अल्पभूतव 3 प्रकार का है ना, वहां से देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देश
प्रमोरियंता नमो।